मयिवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःसस्थानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःसस्थानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब स्मरण करें, इस अध्याय में पहले तो ये हो गया कि संसार क्या है। संसार के बताने का प्रयोजन ये कि वर्तमान स्थिति में हम संसार में पड़े हुए हैं, इस संसार से छुटकारा पाना चाहिए और इससे निवृत्त होकर के परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। संसार से छुटकारे का उपाय बताया कि वैराग्य ही इससे मुक्त होने का उपाय है। यदि इसकी आसक्तियां छोड़ दें तो हम संसार से छुटकारा हो जाए। जब संसार से छुटकारा हो, इधर की तरफ से हम हटें, तब परमात्मा की तरफ लगें। किसी वस्तु को पाने के लिए किसी वस्तु को छोड़ना पड़ता है, ऐसा भी नियम है। बिना कुछ छोड़े बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। बाजार में आप जब जाते हो कुछ लेने के लिए तो कुछ वहां छोड़ करके आते हो, तब वहां से लेकर के आते हो। बिना छोड़े कुछ प्राप्त नहीं होता। हमें यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए छोड़ना पड़ता है, संसार छोड़ना पड़ता है, आसक्तियां छोड़नी पड़ती हैं, द्वंद छोड़ने पड़ते हैं, कामनाओं को छोड़ना पड़ता है। ये बात कब हो गई? और ये बताया कि इन सब के त्याग के द्वारा व्यक्ति फिर अपने हृदय में परमात्मा को खोजे। खोजने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो लोग परमात्मा को नहीं खोजते उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सदा जीव भाव में ही बने रहेंगे, सदा ज्ञानी ही बने रहेंगे। इसलिए ये भी कहा कि देखो ये संसार जो है ये है अव्यय है, सनातन है। क्यों? यदि परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, उसको खोजा नहीं, तो ये संसार अपने आप कभी समाप्त होने वाला नहीं। संसार चक्र सदा एक समान बना ही रहता है, चलता ही रहता है, जन्म जन्मांतर चलता ही रहता है। जब व्यक्ति से छूटे, संसार से छूटे, परमात्मा की खोज करे, आत्मा परमात्मा को देखे, तो फिर उसमें स्थित होकर के अपने आप को देखेगा कि अब हम पूर्णता प्राप्त कर लिए, परम गति प्राप्त हो गई। ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया, यहाँ से लौट करके नहीं आना पड़ता। यहाँ देखते हैं कि कई बार भगवान ने ये बोला कि जहाँ अपने हृदय में परमात्मा को खोजा तो वहां पहुंच जाते हो, जहां से फिर लौट करके नहीं आना पड़ता। कल भी देख रहे थे गच्छन तिंदा पद्म अभ्यंतर, उस पद अभ्य पद को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है? यद गत्वानम्य वर्तन्ते, वहां से पहुंच करके फिर लौटते नहीं। लेकिन एक बात यह है कि ऐसा जाना आना कोई फिजिकल नहीं है कि शरीर से कहीं कोई कहीं दूर तक जाता हो, या जीव कोई यात्रा करता हो तो परमात्मा तक पहुंचता हो। ये गत्वा शब्द जो है ये दो अर्थ रखता है। एक अर्थ तो ऐसा लगता है जैसे कि जाना पड़ता है जीव कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। संस्कृत में गत्वा का अर्थ है जानना, अवगति, विदिते। ये जानना जो हो गत्वार्थ जानने में भी आता है। यदि गत्वा माने जिसको जान करके, मन वर्तन्ते, फिर इस जीव भाव में संसार भाव में नहीं लौटना पड़ता। इसलिए उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए जिसको प्राप्त करके पूर्णता प्राप्त हो जाती है, अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। भगवान सब कहते हैं कि देखो वही तो मेरा धाम है, मैं वही ये स्वरूप दिव्य रूप परमात्मा हूं जिसको भी जीव प्राप्त कर लेता है। अब चलिए आगे, अब ये बताते हैं कि संसार में पड़ा हुआ जीव जो है वो क्या है। इसका वर्णन, जीव के स्वरूप का वर्णन इन श्लोकों में है। तीन चार श्लोकों में ये बताया गया कि जीव क्या है और जीव का पुनर्जन्म कैसे होता है। जो संसार में पड़े हुए जीव हैं वो जीव वास्तव में है क्या, तो ये भगवान कहते हैं वो जीव कुछ नहीं है, मैं ही। अब देखो ये बात, जो लोग ये समझते हैं कि जीव अलग ईश्वर अलग, उनके लिए भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मेरा ही ममई वांशो मेरा ही अंश जब जीव लोके वो जीव लोक में आ गया, और जीव भूता जीव भाव को प्राप्त हो गया, सनातना वो भी सनातन है, मैं भी सनातन जीव भी सनातन, मना संस्थान इंद्रियाणी प्रकृत स्थानी कर सकती, और ये जो है वो हो पांच इंद्रिया और छठवां मन, इन छह को लेकर के प्रकृति स्थान प्रकृति में स्थित रहता है, और प्रकृति स्थान कर सकती, और फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ये जीव का रूप हो गया। आचार्यों ने फिर इसका बहुत विस्तार कर दिया, लेकिन भगवान ने संक्षेप में बता दिया कि जीव क्या है। अब इसको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें, ध्यान दें इसमें कि कहने का तात्पर्य। एक बात तो ये कि जब भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके, तो जो जीव जो है ये है, शास्त्रीय भाषा में कहना चाहिए ब्रह्म का अंश नहीं है, परमात्मा का अंश नहीं है, ये जीव ईश्वर का अंश है। इसलिए यहाँ तो भगवान ने कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूता, तुलसीदास जी ने रामायण बता दिया कि देखो ये जीव जो है अंश है, तो किसका अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो ये जीव जो है वो ईश्वर का अंश है। अब ईश्वर में और ब्रह्म में क्या अंतर है, ब्रह्म तो व्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है बस, और उसके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं, लेकिन ईश्वर वही ब्रह्म ईश्वर है, लेकिन ईश्वर के अधीन माया है, और माया का रचा हुआ जगत और जीव है, इसलिए ईश्वर जो है उसका स्वामी है। ईश्वर के साथ जो है वो हो माया की उपाधि है, माया की उपाधि के कारण जगत और जीवों की उपाधि है, ऐसा जो ईश्वर है उसका अंश जीव है, माने जीव जो है वो औपाधिक रचना है, जो समस्त माया की उपाधि है वो ईश्वर है, और जो व्यस्त माया की उपाधि है उसके माया के एक अंश की उपाधि जिस चैतन्य को है वो जीव है, और जो अपनी उपाधि को माया को जानता है वो ईश्वर है, जो अपनी उपाधि को अपने अज्ञान को नहीं जानता वो जीव है। तो ये भी सब तुलना करके भी तुलसीदास जी ने रामायण में जो बताया है उसका सहारा लेना चाहिए। वहां लक्ष्मण जी जब भगवान से पूछते हैं कि जीव क्या है ईश्वर क्या है ये भी सब हमें बताइए, तो वहां भगवान बताते हैं कि देखो माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। पहली अंक में हो गया जीव और दूसरे अंक में हो गया शिव के माने ईश्वर। माया ब्रह्म न आप कहूं जाने, न माया को जाने न ब्रह्म को जाने न अपने स्वरूप को जाने, ऐसा जो नहीं जानता है जान कही है सो जीव, जो नहीं जानता उसी का नाम जीव है। अपने मन से पूछ लो या दूसरे किसी व्यक्ति से पूछो कि तुम ब्रह्म को जानते हो, देखा है कि नहीं जानते, नहीं देखा है। माया को जानते हो कि माया कुछ कुछ लगती तो है लेकिन जानते नहीं क्या है ये, अपने आप को जानते हो कि अपना स्वरूप क्या है, क्या शरीर ही तुम हो, क्या ये नहीं मालूम शरीर हम है कि कुछ और हम है, तो नहीं जानते नहीं जानते नहीं जानते इसके माने क्या जीवो। अगर ये है तीन प्रश्नों का उत्तर ये आ गए कि जानता हूं जानता हूं जानता हूं, तो ब्रह्म हो गया, जीव भाव समाप्त हो गया। जैसे प्रश्न पत्र आते हैं उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, लिखा हुआ इस प्रकार तीन प्रश्न हैं, इन तीन प्रश्नों का उत्तर दो। आपने कह दिया नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता, तो नीचे लिख दिया जी, फिर लिखा कि जानता हूं जानता हूं जानता हूं, तो तुम ब्रह्म, पास हो गए, फेल हो गए, नहीं जानते तो फेल हो गए, जीव हो, जानते हो तो तुम ब्रह्म हो गए, पास हो गए तुम। महर्षि ऐसे तुलसीदास ही बताते हैं, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, ये बंधन मोक्ष का जो कारण है वो ईश्वर, ईश्वर की माया है, उसके कारण जीव बंधन में है। माया के कारण से अज्ञान और अज्ञान के कारण जीव बंधन में है, लेकिन जीव अपने कर्म के बंधन में है और कर्म का फल देने वाला ईश्वर है, इसलिए ईश्वर जो है जीव के बंधन का कारण है, ईश्वर उसके ऊपर डंडा लिए खड़ा रहता है, बस इसलिए जीव बंधन में है। इस प्रकार से जीव और ईश्वर को उनका संबंध देखो। अब इसमें दो बातें साफ साफ देखनी चाहिए, एक तो तत्व रूप परमात्मा और दूसरा उसकी उपाधि। बस यही कहने का तात्पर्य हुआ ना कि वो परमात्मा अपनी माया उपाधि से ईश्वर, परमात्मा परमात्मा ही रहा, लेकिन जो उपाधि थी वो पूरी उपाधि थी उसकी, तो उपाधि धारण करने वाला चैतन्य हो गया ईश्वर, और उपाधि के हिस्से किए गए छोटे 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 बहुत से हिस्से कर दिए गए, तो उन छोटे छोटे हिस्सों में भी चैतन्य विद्यमान हुआ, उस चैतन्य की उपाधि वो छोटे छोटे हिस्से ही बने, तो जो छोटे छोटे हिस्से बने वो जीव हो गया। अब दोनों में अंतर क्या हुआ, यदि समस्त उपाधि होती तो ऐसा नहीं कि समस्त उपाधि के कारण ईश्वर को ज्यादा भयंकर अज्ञान हो गया, ऐसा नहीं, समस्त की उपाधि को अज्ञान उसका है, स्वामी है, तो फिर उसको मालूम है कि ये माया है, मैं उसका स्वामी हूं, तो ज्ञान रहता है। लेकिन जहां व्यस्त की उपाधि लग गई तो मैं और तुम का भेद हो गया, मैं कुछ और हूं, ईश्वर कुछ और है, एक जीव मैं अलग हूं, दूसरा जीव अलग है, इस प्रकार के जहां भेदोपाधि आ गई वहां से व्यक्ति जो है अज्ञान में पड़ गया। फिर अखंडता अपनी जो है कि मैं ही सर्वत्र विद्यमान हूं वो भुला गया, मैं एक व्यक्ति, तुम दूसरे व्यक्ति, वो तीसरा व्यक्ति, वो चौथा व्यक्ति, इस प्रकार का जो भेद आ गया, बस यहीं से जीव भाव आ गया, ये रूप बना। तो जो उपाधि है उसका वर्णन यहां करते हैं कि देखो इस श्लोक में पहली बात तो ये कि जीव का जो असली रूप है वो परमात्मा ही है। दूसरी बात, ये जो अंश है वो उपाधिकृत अंश है, ब्रह्म तो अखंड एक रस है, उसके अंश होते ही नहीं है, लेकिन जैसे आकाश के भी अंशवत हो सकते हैं, जैसे एक महाकाश है और उस महाकाश में बहुत से घड़े रखे हों तो घटाकाश घटाकाश बहुत से हो जाएंगे, लेकिन वो एक अखंड आकाश रहेगा क्योंकि अविभक्त है, लेकिन घरों घरों में अलग अलग मानो आकाश विभक्त हो गया है, मानो हो गया है, ऐसी भ्रांति उत्पन्न होती है। ऐसे ही वो चैतन्य सब शरीरों में स्थित होने के कारण से सबको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन शरीर रूपी घटों के कारण से वो चैतन्य भिन्न भिन्न सा प्रतीत हो रहा है। तो भिन्न भिन्न सा प्रतीत होना यही उसकी उपाधि के कारण से भेद हो गया, यही अंश हो गया। तो अंश तो उसका परमात्मा को हो नहीं सकता, लेकिन इस प्रकार से अंश हो गया, पहली बात तो ये। तो अंश है तो कैसे है, तो ममई वांसो जीव लोके। अब जहां अंश को अंश की उपाधि धारण की, माया के अंश की या उपाधि के अंश की उपाधि धारण की, तो वहां से जीव भाव हो गया, जीव लोके। अब वो जीव लोक लोक बन गया। जीव लोक लोक बन क्या है, जीवानुभूति कि मैं जीव हूं, ऐसी प्रतीत होने लगी, उसका नाम जीव लोक। जीव भूता, जीव भूता माने जीव भाव को प्राप्त हो गया। अब ऐसा नहीं कि वो ब्रह्म जीव बना हो, कोई उसमें इस प्रकार का केमिकल चेंज आया हो, कोई रचना इस प्रकार की हुई हो जिससे कि जीव बना हो, सो नहीं है, ब्रह्म ब्रह्म ही रहा और जीव भाव की प्रतीति होने लगी, लगने लगा कि मानव जीव है, इसलिए जीव भूता कहा। जीव भूता और जीव लोके सनातना, और सनातन माने ये जीव भी सनातन, सनातन शरीर के नष्ट होने पर ये जीव समाप्त नहीं होता, ये जीव बना रहता है। तो बना रहता तो जीव क्या करता है, जीव अपने सूक्ष्म शरीर को कारण शरीर को लेकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इसे दूसरी पंक्ति में क्या बताया, जीव के साथ में क्या क्या उपाधियां हैं, सूक्ष्म शरीर की उपाधि है और कारण शरीर की उपाधि। इसमें देखो ये यहां पर जो कह दिया कि यह मना संस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सदी, तो मन छठवा, पांच इंद्रियां तो पांच हैं ज्ञान इंद्रियां और एक छठवां मन, इसलिए छह गिना दिए। मनास स्थान, मन छठवां है और इंद्रियां, और इंद्रियां हैं तो छठवां मन है तो इंद्रियां कितनी हुई? पांच हुई। अपने आप ही हिसाब लगाओ उस प्रकार से, तो पांच इंद्रियां और एक मन, बस एक तो ये कारण की सूक्ष्म शरीर हो गया और ये है प्रकृति स्थानी, और प्रकृति में स्थित ये प्रकृति हो गई। सप्तगुणी रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति होती है, प्रकृति स्थानी इनमें स्थित रहते हुए, इनमें तादात्म्य रखते हुए, इनमें उपाधि, इनकी उपाधि को लिए हुए एक से वो चैतन्य एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। कर्षत के माने एक स्थूल शरीर से अपने आप को निकाल लेता है, हाँ, निकाल करके फिर दूसरे शरीर में चल देता है। तो जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तब क्या होता है? जीव अपने साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अपने साथ ले जाता है। इसमें मालूम होना चाहिए कि देखो स्थूल शरीर मात्र ही ये नहीं है, इसमें एक सूक्ष्म शरीर भी है, एक कारण शरीर भी है, और इन सूक्ष्म और कारण शरीर की उपाधि से जो चैतन्य इनमें व्याप्त है या प्रतिबिंबित हो रहा है उसी चैतन्य का नाम जीव है। इस श्लोक से देखो ये बातें पता चल जाती है। अब ये बात ये कि शास्त्र जो है ये है, इनकी इनको संक्षेप करने की आदत होती है कि जितना कम से कम बताना पड़े उतना अच्छा है, और समझने वाले जो है उसी में सब समझ लें। यद्य सूक्ष्म शरीर में तो शंकराचार्य बोलेंगे तो पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच प्राण हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, मन बुद्धि हैं, इस प्रकार से सत्रह तत्व हैं। इन सत्रह तत्व को मिलाकर के सूक्ष्म शरीर है। जब जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो इन सत्रह को लेकर के जाता है। यहाँ मना संस्थान इंद्रियां बस छह इंद्रियां बस बता दिया और उसके बाद छुट्टी कर दी। प्रकृति स्थान बता दिया, कारण शरीर प्रकृति स्थान, लेकिन ये नहीं बताया कि कारण शरीर जो सप्तगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, इस प्रकार से तीन तीन गुण उसमें होते हैं। अब उनको आगे गुणों का नाम आगे दे देंगे, लेकिन यहाँ पर बता दिया कि इस प्रकार से जीव का रूप ये हुआ। तब जीव को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बात ये कि परमात्मा को जानना तो बाद की बात है, पहले बात तो ये है कि जीव क्या है उसी को समझना चाहिए और अपने आप अपने अंदर देखना भी चाहिए। यही अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म विद्या बने जैसे कल देख रहे थे, अपने अंदर देखो, अपने पांच कर्मेंद्रियों को देखो कि किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में नहीं है पांच कर्मेंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर में है। पांच प्राण भी सूक्ष्म शरीर में है, पांच ज्ञानेन्द्रियां भी सूक्ष्म शरीर में है, मन बुद्धि चित्तांकार भी सूक्ष्म शरीर में है। फिर ये भी देखो कि प्राण कर्मेंद्रियां किस प्रकार से क्रिया शक्ति जो है उसी का नाम है। ज्ञानेन्द्रियां और मन बुद्धि आदि ज्ञान शक्ति इनमें है। ज्ञान शक्ति क्या है, क्रिया शक्ति क्या है, इनको सबको अपने भीतर देखो। अगर ये सब दिखाई दे तो समझो कि अध्यात्म विद्या प्रारंभ हुई। अगर ये सब कुछ न दिखाई दे, अपने भीतर आंखें बंद की अंधेरा दिखाई दिया, तो फिर अध्यात्म विद्या में प्रवेश नहीं। तो जब बस बाहर ही भटकते रहो, शरीर ही में रहो और बाहर दुनिया में भटका करो, बस और कोई उपाय नहीं। इसलिए अध्यात्म विद्या का माने अपने भीतर देखो, बिना अपने भीतर देखे हुए अध्यात्म विद्या नहीं आते। दो विभाजन कर दो प्रारंभ में, एक अपने भीतर एक अपने बाहर। व्यवहार काल में अपने बाहर जगत को देखो, खाना पीना उठना बैठना समझ आए ना कर लो, और अध्यात्म विद्या के माने अपने भीतर देखते रहो। सूक्ष्म शरीर को देख लो, फिर कारण शरीर को देखो, अपने स्वभाव को पहचानो, हम सत्वगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है, जो जो लक्षण सत्वगुण रजोगुण इत्यादि के बताए गए उन लक्षणों में से कौन से लक्षण हमें अनुभव में आ रहे हैं, हमारी प्रकृति किस प्रकार की है, स्वभाव किस प्रकार से, इस प्रकार से अपने आप को पहचानो देखो। सबको पता चल जाएगा कि हम तमोगुणी है कि रजोगुणी है कि सत्वगुणी। जो उनकी लिस्ट है, सत्वगुण की लिस्ट बना लो, रजोगुण की लिस्ट बना लो, तमोगुण की लिस्ट बना लो, और उसके बाद में अपने आप इंट्रोस्पेक्शन करते जाओ और उनके ऊपर टिक लगाते जाओ। हो सकता है कि पहली बार गलत टिक भी लगा जाओ। जैसे ये देखा गया कि भाई सत्वगुण का लक्षण शांति है, तो हम शांत हैं कि नहीं है, तो टिक लगा दिया हम शांत हैं। क्यों? इस समय अकेले बैठे हुए हैं और आप भीतर अपने विचार कर रहे हैं, कोई दूसरा है नहीं, इसलिए कैसे हैं शांत, टिक लगा दिया शांत। जब रजोगुण में आए तब वहां मालूम हुआ रजोगुण का लक्षण है अशांति, अशांत रजोगुण का लक्षण है। जब वहां पर अशांति की बात आई, तब देखा कि देखो हम तो बिल्कुल शांत हैं, इसके मैंने रजोगुण नहीं है, मुझे काट दिया। ये तो कितनी देर की बात हुई, जितनी देर बैठे इंट्रोस्पेक्शन कर रहे थे, अपने भीतर विचार कर रहे थे, और जहां बाहर निकले और जहां व्यवहार होने लगा तहां क्या हो गया, शांत हवा उड़ गई और उसके बाद अशांत की आंधी चलने लगी। बस हाँ, अब जहां शांत की आंधी चलने लगी तो अब क्या पता चला। इसलिए उस समय जिस समय की इंट्रोस्पेक्शन आप कर रहे हो कि हम सत्वगुणी है रजोगुणी है, उस समय तत्काल की बात को मत देखो, ये देखो कि 24 घंटे इनमें से कौन गुण की प्रधानता रहती है। क्या आप बराबर हर समय शांत रहते हैं, क्या हर समय आप प्रसन्न रहते हो, क्या हर समय आप विरक्त रहते हो, क्या हर समय आपको ज्ञान की इच्छा रहती है, ज्ञान में रुचि रहती है। आप देखो कि हर समय नहीं रहती, नहीं रहती तो इसके माने रजोगुण लक्षण है। तो अगर कामनाएं बहुत हैं तो इसका माने रजोगुणी स्वभाव है, अगर कर्म में बहुत प्रवृत्ति है तो इसका माने रजोगुणी स्वभाव है। रजोगुणी स्वभाव तो उसके बाद क्या होगा, अशांति भी होगी, अशांति कामना कर्म अशांति ये भी अशांति भी उसके साथ में होगी। और अशांति के माने क्या है, अशांति का परिणाम दुख, जहां शांति है वहां सुख और जहां अशांति वहां दुख। जितनी देर आपको अशांति का अनुभव होगा उतनी देर आपको दुख का भी अनुभव होगा। अशांत से कुतो सुखम, दूसरी अध्याय में भगवान पहले बोला है कि जब ये अशांति हुई मन में तो फिर सुख कहां। इसलिए रजोगुण में यदि अशांति है तो दुख भी है। और कोई व्यक्ति बड़ा अभिमान करे कि हमें तो हमारी कामनाओं का तो कोई पारावार नहीं, हम तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं और बराबर कर्म में लगे रहते हैं, आंधी तूफान की तरह चलते रहते हैं, तो वो बड़ा अहंकार अपने आप को दे रहा। लेकिन इसके माने है आप जानो न जानो, शास्त्र ये कहते हैं कि आप सदा दुखी दुखी रहते हो। आप यद्यपि सदा दुखी हो लेकिन अपने आप को भ्रांत से सुखी माने हो, क्योंकि आप जानते ही नहीं सुख कहते किसे हैं। इसलिए जिस दुख में आप पड़े हुए हो उसी को आप सुख समझ रहे हो और उसी का अभिमान कर रहे हो। इसलिए ये सब बातें कहेंगे अपनी प्रकृति किस प्रकार की है, तो शास्त्र का सहारा लेकर के, संतों का सहारा लेकर के फिर इस प्रकृति को भी समझो, ये भी देखो। तो आचार्य ने बता दिया, इनका सबका विस्तार करके बता दिया कि देखो किस प्रकार से जीव का भाव, जीव भाव किस प्रकार से बनता है, उसकी स्थिति कैसे होती है।